నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం అజ్ఞా హరే కృష్ణ హరే రామ. నాసిక్ కే ఇస్ పుణ్య భూమి మే హమ్ సభీ భక్తోం కా స్వాగత్ కర్నా చాహెంగే. ఆజ్ సే జో హమ్ శ్రీ రామ్ కథా కి సప్తాహ ప్రారంభ కర్ రహే హై. ఆజ్ సే లేకర్ పూరే ఏక్ హఫ్తా హనుమాన్ జయంతి తక్ హమ్ ప్రభు శ్రీ రామచంద్ర ఔర్ ఉన్కే భక్త ఉన్కే పార్షద్ ఔర్ విశేష పార్షద్ శ్రీ హనుమాన్ జీ కే విషయ మే హమ్ చర్చా కరెంగే. ఔర్ ముజే అతి ప్రసన్నతా హో రహీ హై ఔర్ అప్నే ఆప్ కో మే బహుత్ భాగ్యశాలీ మాన్ రహా హూ కి భగవాన్ శ్రీ రామచంద్ర కే విషయ మే నాసిక్ కే ఇస్ పుణ్య భూమి మే కుచ్ కథా కర్నే కా అవసర్ మిలా హై. తో ఇస్సే అచ్చా సౌభాగ్య హమారా ఔర్ క్యా హో సక్తా హై కి జహాన్ పర్ భగవాన్ శ్రీ రామచంద్ర నే అప్నీ లీలాయే కి ఇస్ పంచవటీ ధామ్ మే యహాన్ పర్ హమ్ ఉన్కే విషయ మే శ్రవణ కీర్తన్ కర్నే జానే వాలే హై. నీతి కే ఏక్ సుందర శ్లోక్ మే కహా గయా హై కి ఇస్ కలియుగ్ మే మనుష్య కో అప్నా దిన్ కైసే గుజారనా చాహియే. ఏక్ బహుత్ హీ సుందర శ్లోక్ మే కహా హై कि पूरा दिन कैसे बीतना चाहिए. जैसे दिन के अलग अलग प्रहर हैं तो जो अलग अलग प्रहर हैं दिन के वो कैसे बीतने चाहिए. तो श्लोक में कहा गया है प्रातः द्यूत प्रसंगानाम मध्यान्ह स्त्री प्रसंगा रात्रौ चौर प्रसंगानाम కాలౌ గచ్చతి ధీమత. కాలౌ గచ్చతి ధీమత. ధీమత కహతే హై ఉస్ వ్యక్తి కో జిస్కీ బుద్ధి బహుత్ ప్రగద్ హై. తో జో బుద్ధిమాన్ వ్యక్తి హై వో వ్యక్తి ఇస్ కలియుగ్ మే అప్నా దిన్ కైసే బితాయేగా యే బతాయా గయా హై. और बहुत रोमांचक ढंग से बताया गया है कि वो व्यक्ति अपना दिन कैसे बिताएगा. और उसके द्वारा कहा गया है हम सबको कि हमें कैसे अपने दिन बिताने चाहिए. तो कहा गया है प्रातः. प्रातः कहते हैं सुबह को. कि प्रातः का जो समय है दिन का तो वो कैसे बीतना चाहिए. द्यूत प्रसंगा नाम. द्यूत के विषय में चर्चा कर और द्यूत आप जानते हैं किसे कहते हैं. जुए को जो आजकल चल रहा है. तो गैम्बलिंग या जुआ द्यूत. तो प्रातः का समय बीतना चाहिए जुए के विषय में चर्चा करने में. और फिर कहा गया है मध्यान्ह स्त्री प्रसंगा, जो मध्य दिवस मध्यान्ह ये समय बीतना चाहिए स्त्री प्रसंगा, स्त्रियों के विषय में चर्चा करने में, ये दोपहर का समय। रात्रौ चौर प्रसंगा नाम, और रात्रि में समय बीतना चाहिए चोरों के विषय में चर्चा करने में। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये राम कथा शुरू हो रही है कि काम कथा, कि दिन इस प्रकार से बीतना चाहिए। कई लोगों का बीत रहा होगा इस प्रकार से दिन, प्रातः द्यूत प्रसंगा नाम, शेयर मार्केट में क्या है, वैल्यू क्या चल रहा है शेयर्स का, सुबह सुबह पता लगाना। मध्यान्ह स्त्री प्रसंगा, रात्रौ चौर प्रसंग। और कहा गया है कालौ गच्छति धीमता, किस प्रकार से जो व्यक्ति अपना दिन बिताता है वो सबसे बुद्धिमानी व्यक्ति है। परंतु समझाया गया है कि ये जो अलग अलग प्रसंग हैं, द्यूत स्त्री और चौर प्रसंग, ये क्या हैं? द्यूत प्रसंग किसे कहेंगे? महाभारत को। तो प्रातः काल बीतना चाहिए महाभारत के विषय में चर्चा करने में, और महाभारत का युद्ध हुआ द्यूत क्रीड़ा के वजह से। तो द्यूत क्रीड़ा हुई जिसमें युधिष्ठिर महाराज हारे और राज्य छीना गया, और केवल उतना ही नहीं बल्कि द्रौपदी का अपमान हुआ उस द्यूत क्रीड़ा में। तो सबसे विशेष कारण महाभारत युद्ध होने का था द्रौपदी का अपमान। तो द्यूत क्रीड़ा के वजह से महाभारत का युद्ध हुआ, और महाभारत के युद्ध का निष्कर्ष क्या था? महाभारत जो ग्रंथ है उस ग्रंथ का निष्कर्ष क्या है? भगवद गीता। तो प्रातः द्यूत प्रसंगा नाम का अर्थ हुआ कि सुबह का समय बीतना चाहिए श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा करते हुए। मध्यान्ह स्त्री प्रसंगा, तो आप लोग सोच रहे होंगे ये कौन सा ग्रंथ है कि जिसके विषय में स्त्री प्रसंग की चर्चा हो रही है? वो है श्री रामायण। और क्यों इसे स्त्री प्रसंग कहा गया है? आचार्य बताते हैं कि रामायण में जितने भी उतार चढ़ाव आप सुनते हैं देखते हैं, उन सब के पीछे कारण कोई ना कोई स्त्री थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, दशरथ महाराज ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ किया और चार सुपुत्र पाए, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न। परंतु कौन सी वो एक स्त्री थी जिसने बीच में उस इतनी सुंदर कथा में मोड़ लाया? सबसे पहले स्त्री थी मंथरा, और आप सभी वाकिफ हैं इस व्यक्ति से। तो मंथरा ये एक सबसे पहली स्त्री, और मंथरा ने किसका मन भ्रमित किया? कैकेयी का, ये दूसरी स्त्री। तो वहां से फिर कथा मोड़ लेती है जब मंथरा और कैकेयी वो प्रयोजन करते हैं राम सीता लक्ष्मण के वनवास के विषय में। अब वनवास भी वो चले गए थे, और वहां पर भी 14 साल वन में शांति से बिता सकते थे, परंतु वहां पर भी एक और स्त्री आ गई और वो थी शूर्पणखा। और इसको तो आप सब अच्छी से जानते होंगे, जिसके वजह से इस क्षेत्र को नासिक कहा गया है। तो ये शूर्पणखा, ये एक और स्त्री काम मोहिता, जो प्रभु रामचंद्र के पीछे कामुक हो गई। और जब उसका तिरस्कार हुआ, जब उसकी नासिका और उसके कर्ण काट दिए गए यहां पर इसी क्षेत्र में, तो उसी ने जाकर रावण को उत्तेजित किया। अब रामायण में वर्णन आता है कि जब उसकी नासिका और उसके कर्ण काटे गए थे, तो रावण से पहले सबसे पहले वो कहां गई थी, खर और दूषण, ये दो भाई शूर्पणखा के। तो शूर्पणखा सबसे पहले इनके पास गई थी और ये अपने 14,000 सेना को लेकर, सैनिक को लेकर आए और अकेले श्री रामचंद्र ने सबको परास्त कर दिया, खर दूषण का वध कर दिया। परंतु ये पूरी सेना में, खर दूषण की पूरी सेना में एक सैनिक था जिसका नाम था अकंपन। और इस सैनिक कैसे तो बच गया, जीवित रह गया। और ये सैनिक ने जाकर रावण को कहा कि ये खर और दूषण का वध एक मनुष्य ने किया है। तो रावण थोड़ा आश्चर्य हुआ उसको कि एक मनुष्य ने खर और दूषण का वध कर दिया, कौन है ये मनुष्य। तो रावण मारीच के पास जाता है ये प्रस्ताव लेकर कि ये कौन है राम, इसे मुझे ठीक करना है। तो मारीच, कथा में हम सुनेंगे कि मारीच ने एक सैंपल ले लिया था राम से पहले ही, जब विश्वामित्र मुनि के साथ प्रभु रामचंद्र थे वन में, तो वहां पर मारीच को एक लात मारी थी और वो 800 मील दूर गिरा था। तो जैसे ही राम का नाम सुना तो मारीच ने कहा, बिल्कुल नहीं ये गलती करना, ये गलती बिल्कुल मत करना। और घाव भी दिखा दिया, अभी तक वो घाव है। तो रावण ये सब कुछ सुनकर थोड़ा डर गया, सहम गया और चला गया वो फिर से। कोई उसकी योजना नहीं बनी फिर कुछ रामचंद्र जी को करने की। परंतु फिर गई शूर्पणखा। जब फिर से शूर्पणखा गई और उसने क्या किया, उसने कोई शिकायत नहीं की कि ये देखो क्या हो गया है। उसने केवल सीता की सुंदरता का गुणगान किया, केवल सीता के सौंदर्य का गुणगान किया इस शूर्पणखा ने, क्योंकि शूर्पणखा जानती थी कि हम एक ही परिवार के हैं। जैसे मेरे अंदर काम वासना हुई राम के प्रति, वैसे ये मेरा भाई, तो कोई मुझे समय नहीं लगेगा इसके अंदर काम वासना जागृत करना सीता के प्रति। तो शूर्पणखा ने फिर कथा में मोड़ लाया, फिर से वो गया मारीच के पास रावण, और जाकर मारीच को कहता है कि अब मैं कोई लेक्चर नहीं सुनूंगा तुम्हारा, मैं जो कह रहा हूं करो। क्योंकि राम से जो वो भयभीत हुआ था, उससे अधिक जो सीता के प्रति उसके अंदर काम वासना जागृत हुई वो ज्यादा प्रबल थी, इसीलिए वो उसने इतना खतरनाक कदम उठाया। और फिर अगली स्त्री, स्त्री प्रसंग में आती है सीता देवी, कि यदि सीता देवी वो सोने का हिरण के पीछे नहीं मांगती, क्योंकि जब सीता देवी ने वो सोने का हिरण देखा तो प्रभु रामचंद्र से कहते, कितना सुंदर ये सोने का हिरण है, इसे तो होना चाहिए हमारे साथ। तो रामचंद्र जी कहते हैं, मैंने 84 लाख योनियों का निर्माण किया है, मुझे पता है, ये 84 लाख योनियों में कोई सोने का हिरण नहीं है। तो भगवान ने सीता को कह दिया सोना है, हिरण है, लेकिन सोने का हिरण नहीं है कोई। परंतु सीता देवी नहीं, ये तो प्रभु रामचंद्र कह रहे थे एक एक भ्रम है, कोई व्यक्ति मायावी कुछ भ्रम कर रहा है तुम्हारे ऊपर। तो सीता देवी के जो कुछ जो मायावी भ्रम हो, जो कुछ हो चाहिए मुझे। कई बार होता है ऐसा। तब फिर मोड़ आया कि प्रभु रामचंद्र गए वहां पर, हालांकि ये भगवान की योजना भी थी। तो वहां पर गए और लक्ष्मण को भी सीता ने भेजा, और फिर आया रावण। तो रावण ने जब अपहरण किया सीता का, तब तो फिर कथा में क्या मोड़ आता है। तो हम देखते हैं कि रामायण को इसीलिए इस श्लोक में स्त्री प्रसंगा नाम कहा है। इन सब के वजह से रामायण में बहुत बड़े बड़े मोड़ और उतार चढ़ाव हुए। और फिर इस श्लोक में कहा गया है रात्रौ चौर प्रसंगा नाम, रात्रि हमारी बीतनी चाहिए चोरों के विषय में चर्चा करते हुए। और चोरों में सबसे बड़े चोर कौन है? माखन चोर। तो रात्रि बीतनी चाहिए श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते हुए। तो इस प्रकार से प्रातः महाभारत, मध्यान्ह रामायण, और रात्रि बीतनी चाहिए श्रीमद् भागवतम की चर्चा करते हुए। परंतु यदि कलयुग में यह श्लोक की कोई रचना करेगा तो प्रातः क्रिकेट प्रसंगा नाम, मध्यान्ह क्रिकेट प्रसंगा नाम, और रात्रौ भी क्रिकेट प्रसंगा नाम। हर प्रहर में केवल एक ही चीज चल रही है आजकल, और आप सब जानते हैं कि हाल ही में क्या हुआ। सभी जगह पर केवल एक प्रकार का शोक फैला हुआ है पूरे भारत में। पूरा भारतवर्ष एक शोक सभा में है। जैसे जिस दिन ये सब कुछ चल रहा था, उस दिन एक कार्यक्रम था हमारा शुक्रवार के दिन। तो शुक्रवार के दिन कार्यक्रम था, तो बाकी के दिनों, बाकी के शुक्रवारों में कुछ 50 से 100 लोग आते थे, परंतु इस शुक्रवार के दिन केवल कुछ 10-15 गिने चुने आए थे। तो हमने प्रवचन की शुरुआत की कि सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि इतना बड़ा त्याग आप करें हैं आज, कि आज के दिन आप सब कुछ सर्वधर्मान परित्यज्य सब कुछ त्याग कर आज श्रवण करने आए हैं गीता पर। तो मैं कुछ रामचंद्र जी के विषय में कहना चाहता था उस प्रवचन में। तो ऐसे ही मुझे ध्यान में आया कि वास्तविक रूप में जो हो रहा है, उस दिन जो हो रहा था वो क्या था? राम रावण का युद्ध। रावण कहां से था? लंका से। तो राम रावण का युद्ध कलयुग में इस प्रकार से होता है। परंतु क्योंकि अभी राम के इस देश में, राम के इस देश में रावण का गुणगान हो रहा है। बंबई में पिछले महीने सब तरफ बिलबोर्ड पर रावण का गुणगान हो रहा था कि रावण की शक्ति देखी लोगों ने, भक्ति नहीं देखी उसकी, उसका अहंकार देखा, उसका ज्ञान नहीं देखा। तो जब भगवान श्री राम के देश में रावण का गुणगान होगा, उसकी आराधना होगी, तो अवश्य ही रावण के पार्षद जीतेंगे। और फिर कुछ अकल आएगी कि हम क्यों हार रहे हैं। तो यहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी के विषय में कहा गया है कि उनका जो चरित्र है और रामायण में जो उनका चरित्र दर्शाया गया है, रामायण का अर्थ है राम आयण। आयण का अर्थ होता है जब हम उनकी आश्रय ग्रहण करते हैं, तो राम की आश्रय ग्रहण करना उसे कहते हैं रामायण। जैसे नारायण है जो सभी नरों के आश्रय हैं, आयन हैं, इसलिए उन्हें नारायण कहा जाता है। तो जो रामायण ग्रंथ है, इस शब्द का अर्थ है प्रभु श्री रामचंद्र जी का आश्रय ग्रहण करना। और इसके साथ साथ एक और अर्थ हमारे आचार्य बताते हैं रामायण का, राम आयन, ये एक अर्थ हुआ राम जो आश्रय हैं सबके। परंतु रामायण इस शब्द का एक और अर्थ है रमा आयन। और रमा कौन है? राम है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, और रमा है श्री सीता देवी। तो रमा आयन भी इसे कहा गया है, इसका यह भी अर्थ है, क्योंकि बिना सीता देवी की कृपा से हम प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा नहीं ग्रहण कर सकते। तो रामायण की रचना बहुत ही रोमांचक ढंग से हुई, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। और रामायण को या रमा आयण को सीता चरित्र भी कहा गया है। तो क्यों रामायण को सीता चरित्र कहा गया है? बहुत सुंदर आचार्यों ने इसका विश्लेषण किया है। तो रामायण में जैसे भागवत में स्कंद हैं, कितने स्कंद हैं भागवत के? 12 स्कंद भागवत के। उसी प्रकार से रामायण में खंड हैं। तो कितने खंड हैं रामायण के, कोई जानता है? भाई आप लोग नासिक के निवासी हैं, आप लोग को तो जानना चाहिए। यदि क्रिकेट का स्कोर पूछा होता तो तुरंत आ जाता। 7 कांड हैं। 7 कांड हैं, जैसे बाल कांड। चलो देखते हैं किनको किनको पता है कौन से कांड है। सबसे पहला कांड है बाल कांड, दूसरा कांड अयोध्या कांड, उसके पश्चात अरण्य कांड, उसके पश्चात पता नहीं है उसके पश्चात किष्किंधा कांड, उसके पश्चात सुंदर कांड, उसके पश्चात युद्ध कांड, और अंततः उत्तर कांड। तो ये 7 कांड रामायण में हैं। और जैसे अध्याय होते हैं किसी ग्रंथ में, तो उनको सर्ग कहा गया है रामायण में। तो 7 कांड हैं, 500 सर्ग हैं, और कितने श्लोक हैं रामायण में? 24,000। भागवत में कितने हैं? 18,000। और रामायण में है 24,000 श्लोक। तो इस प्रकार से रामायण का विभाजन किया गया है। और स्कंद पुराण में नारद मुनि का संवाद सनत कुमार के साथ दिया गया है, उसमें नारद मुनि रामायण इस ग्रंथ का गुणगान करते हुए सबसे पहले कलयुग की दशा बता रहे हैं सनत कुमारों को। और कलयुग की दशा बताते हुए कहते हैं, कामार्थ यः स्वदेहश्च लुब्धा अन्योन्य तत्परा कालौ सर्वे भविष्यन्ति स्वल्प आयुर् बहुपुत्र का। बहुत ही सुंदर विश्लेषण कर रहे हैं इस कलयुग का सबसे पहले। और फिर वो बताते हैं कि इस कलयुग में एकमात्र उद्धार का प्रयोजन क्या है लोगों के। तो कहते हैं कि कलयुग में क्या पाएंगे हम, किन प्रकार के लोग, किन प्रकार के लोगों को हम पाएंगे इस कलयुग में। नारद मुनि कहते हैं कामार्थ य स्वदेहश्च, कि काम वेदना से पीड़ित इस कलयुग में ये एक सबसे विशेष दुर्गुण, या जो कुछ कहे लोग गुण कहते हैं इसे, लोग काम वेदना से पीड़ित रहेंगे। जैसे रावण काम वेदना से पीड़ित था, तो जो काम वासना है ये प्रमुख लक्षण है इस कलयुग का। कामार्थ यह स्वदेहश्च, और क्योंकि वो काम वासना से पीड़ित रहेंगे, ये जो शब्द है पीड़ित रहना, हम किसके विषय में कहेंगे, कोई व्यक्ति पीड़ित क्यों रहता है, जब कोई व्यक्ति बीमार रहता है। तो ये जो काम वासना है ये बीमारी है इस कलयुग में, और केवल कलयुग में नहीं हर युग में, परंतु इस कलयुग में सबसे बड़ी बीमारी है ये काम वासना। तो सभी इससे पीड़ित रहेंगे, और इससे पीड़ित रहने के वजह से कहा गया है स्वदेहश्च, सबके जो शरीर हैं वो बहुत नाटे रहेंगे, नाटे शरीर वाले और बहुत कमजोर, कोई शक्ति नहीं, शारीरिक शक्ति नहीं, आध्यात्मिक शक्ति नहीं, मानसिक शक्ति नहीं, सब कुछ मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य युपद्रित, भागवत में भी कहा गया है। कामार्थ स्व ह्य देश चह, कि काम वासना से पीड़ित नाटे शरीर वाले लुब्ध अन्योन्य तत्परा, और तत्पर रहेंगे किसके लिए इस कलयुग में, लोग तत्पर रहेंगे कुछ पाने के लिए, धन लुब्ध लोभी रहेंगे पूर्ण प्रकार से, लोभ रहेगा कुछ चीज पाने के लिए, धन एकत्रित करने के लिए, संग्रह करने के लिए, और वो किस लिए, ताकि काम वासना पूरी हो। और कालौ सर्वे भविष्यन्ति, और नारद मुनि कहते हैं कि इस कलयुग में पाएंगे हम कि लोग केवल एक दूसरे के काम वासना पर निर्भर रहेंगे। अंग्रेजी में श्रील प्रभुपाद इसे कहते थे यू स्क्रैच माय बैक आई स्क्रैच योर बैक, एक दूसरे पर केवल काम वासना पर निर्भर लोग रहेंगे। कि जैसे किसी व्यक्ति को यदि खुजली होती है, और यदि पीठ पर खुजली हो तो हाथ नहीं पहुंच सकता, तो किसी दूसरे व्यक्ति को कहता है भाई थोड़ा मेरा पीठ खुजलाना, तो वो व्यक्ति कहेगा भाई मेरी भी पीठ खुजलाना चाहता हूं मैं, तो दोनों व्यक्ति क्या कहेंगे, ठीक है हम दोनों खड़े हो जाते हैं, तुम मेरी पीठ खुजलाओ मैं तुम्हारी खुजलाता हूं, और मैं कब तक खुजलाऊंगा, जब तक तुम खुजलाते रहोगे। तो दोनों एक दूसरे के पीठ खुजलाते रहेंगे, और दोनों फिर कहेंगे आह क्या आनंद है। इसे कहते हैं काम भोग, प्रहलाद महाराज ने भागवत में भी कहा गया है कि ये खुजली के समान है। जैसे जब हम खुजलाते हैं तो कितना आनंद मिलता है, कोई व्यक्ति रोक नहीं सकता अपने आप को जब वो खुजली आती है। तो प्रहलाद महाराज ने बहुत ही उपयुक्त ये उदाहरण दिया है कि ये जो काम वासना है इसको संतुष्ट करना इसी प्रकार से है। और फिर आगे नारद मुनि कहते हैं स्वल्प आयुर बहुपुत्र का, कि आयु स्वल्प रहेगी लोगों की और बहुत से संतान बहुपुत्र का, लाइन लग जाएगी क्रिकेट टीम। जैसे हमारे एक इस्कॉन के सन्यासी वो बता रहे थे कि उनके परिवार में, एक उनका परिवार माता पिता और 14 बच्चे, 14 बच्चे थे और उनका छोटा सा घर था, तो वो भोजन इत्यादि पाने के लिए कई बार घर के बाहर कोर्टयार्ड में भोजन लेते थे। तो एक बार वो कोर्टयार्ड में, जब अपने घर के कोर्टयार्ड में बाहर आंगन में भोजन ले रहे थे 16 लोग एक साथ बैठकर और एक ही परिवार, तो कुछ लोगों ने देखा, उनको लगा कि कोई होटल खुला है नया, तो वो भी पंगत में बैठ गया आकर। और ये जो हमारे सन्यासी, ये 14वां नंबर के थे, ये सबसे अंतिम। और इन्होंने इस्कॉन के संपर्क में आए और उसके पश्चात इन्होंने अपना जीवन इस्कॉन को समर्पण किया, सन्यासी बने। तो ये कह रहे थे कि जब ये ब्रह्मचारी बने तो इनकी माता ने इतना शोक किया, अरे 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 अरे। और शोक क्या था कि मैं कैसे ये पुत्र के बिना जीऊंगी। तो उन्हें कहा, बाकी 13 हैं, तो चिंता थी कि ये एक पुत्र ब्रह्मचारी बन रहा है तो परिवार कैसे चलेगा। तो उन्होंने कहा, भाई ये 13 जो हैं, ये इतना बड़ा क्रिकेट टीम से भी ज्यादा जो है, ये क्या कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, तुम क्यों गए वहां पर। तो ये यहां पर नारद मुनि बता रहे हैं, ये एक लक्षण है, स्वल्प आयु बहुपुत्र का, ये एक लक्षण है कलयुग का। तो फिर उन्होंने पूछा कि भाई इस कलयुग में जो निवासी होंगे उनका कुछ उद्धार का उपाय है। तो नारद मुनि कहते हैं, तावत पापानि देहेस्मिन् निवसन्ति तपोधना, यावन श्रूयते सम्यग् श्रीमद् रामायणम् नरये। बहुत ही सुंदर श्लोक नारद मुनि अब कह रहे हैं और वो बोलते हैं, तावत पापानि देहेस्मिन् निवसन्ति तपोधना, इस शरीर में, कलयुग में, इस शरीर में तब तक पाप रहेगा जब तक कि वो मनुष्य रामायण की कथा भली भांति श्रवण नहीं करता, तब तक इस शरीर में पाप बना रहेगा। यदि हम देखें तो ये जो हमारा शरीर है केवल एक पापों का ढेर है, जो हमारे इतने जन्मों से हम पाप करते आ रहे हैं, सारे पापों को मिलाओ तो ये शरीर मिला है हमें। और ये शरीर में इतने सारे तकलीफें हैं वो केवल ये पापों का परिणाम निकलते आता है बीच बीच में, और अंततः मृत्यु। अब कई लोग तो बहुत गर्व करते हैं, मेरा शरीर देखो कितना सुंदर है, कितना सुडौल है, कितना तंदुरुस्त है, फोटो खींचो इसका, लगाओ सबके सामने बिलबोर्ड पर, बंबई में चारों तरफ केवल किसका प्रदर्शन हो रहा है, शरीर का प्रदर्शन। टीवी खोलो तो किसका प्रदर्शन है, शरीर का प्रदर्शन, सब जगह पर शरीर का प्रदर्शन हो रहा है। सारी दुकानों में सारे पदार्थ किसके लिए हैं, शरीर के लिए, कोई साबुन, कपड़ा, क्रीम, टूथपेस्ट, सब शरीर के लिए। परंतु शास्त्रों के अनुसार जब हम रोज देखते हैं कि आज भी ये शरीर है मेरा, इसका अर्थ क्या है, ये लक्षण है मेरे पापों की घटरी का, ये लक्षण है कि मैंने इतने सारे पाप किए हैं इसलिए ये पंच महाभूत का शरीर लेना पड़ा मुझे। और शरीर, ये जो शब्द है, इसका अर्थ है जो सरकता रहता है, जो सरकता रहे। और किस दिशा में सरकता रहता है शरीर, दुख, व्याधि, जरा और मृत्यु, इसकी दिशा में शरीर सरकता रहता है। तो नारद मुनि कहते हैं कि इस कलयुग में पाप बना रहेगा हर व्यक्ति के शरीर में, कब तक? जब तक वो मनुष्य श्री रामायण की कथा भली भांति श्रवण नहीं करता। तो यदि हमें अपने शरीर को पाप मुक्त करना है तो हमें क्या करना होगा? श्री रामायण की कथा भली भांति कहा गया है, श्रीमद् रामायणम नरय यावन श्रवते सम्यक। सम्यक का अर्थ है भली भांति, सम्यक श्रवण करना है हमें प्रभु श्री रामचंद्र जी का चरित्र। क्योंकि रावण जो था वो पापों का ढेर था और श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया और उसके वध से ये दिखाया कि किस प्रकार से केवल ये श्रवण करने से हम अपने पापों के ढेर को खत्म कर सकते हैं। और ये जो रामनवमी का पर्व है ये बहुत ही सुंदर पर्व है, चैत्र मास में यह आता है, ये चैत्र का महीना चल रहा है और शुक्ल पक्ष। तो रामायण में वर्णन है कि इस महीने में जब हम श्रवण करते हैं तो उसका फल क्या होता है। चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष में जब ये जो चल रहा है रामायण कथा जब श्रवण करते हैं तो उसका फल क्या होता है, तो इसके विषय में नारद मुनि एक कथा सुनाते हैं कि प्राचीन कलयुग में एक व्याध था। व्याध हंटर जिसे कहते हैं, शिकारी, जिसका नाम था कलिक। और यह व्याध ये सभी प्रकार के दुष्कर्मों में लगा था, डकैती करना, चोरी करना, लोगों की हत्या करना, स्त्रियों का बलात्कार, सभी प्रकार के पशुओं की हत्या, सभी प्रकार के अलग अलग प्रकार के दुष्कर्मों में लगा हुआ था व्याध। तो एक बार ये व्याध जिसका नाम था कलिक, ये कलिक सौवीर नगर नाम के प्रांत में गया और जब इसने ये सुंदर सौवीर नगर देखा तो इस सौवीर नगर में वो देखता है कि सुंदर उपवन, सरोवर और सभी व्यक्ति जो हैं आभूषणों से सुसज्जित, बड़ी बड़ी दुकानें सुसज्जित इस नगर में। तो ये बहुत ज्यादा प्रलोभित हुआ, पहले से ही गलत कर्मों में लगा हुआ था तो अब प्रलोभित हुआ कि यहां से कुछ मिल जाए तो मेरा जीवन बन जाए। तो ऐसे सोचते सोचते वो एक मंदिर के सामने आ गया, केशव जी का मंदिर जिसके अंदर प्रभु श्री रामचंद्र जी के अर्च विग्रह थे। तो जब उसने सुंदर केशव जी के मंदिर को देखा जो सोने के कलशों से ढका हुआ था तो उसके अंदर चोरी करने की लालसा और बढ़ने लगी, और बढ़ने लगी। परंतु उसने देखा कि ये मंदिर के एक पुजारी वहां पर खड़े थे और दिखने में एकदम सत्वगुणी, प्रशांत चित्त, और इनका नाम था उत्तंग ऋषि। तो इस कलिक ने देखा कि ये व्यक्ति जो है ये शायद यहां की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया है, तो जब तक ये व्यक्ति यहां पर रहेगा ये सोने के कलशों को मैं नहीं चोरी कर सकता। तो कलिक क्या करता है, तुरंत रात्रि में उत्तंग मुनि के ऊपर कूदकर उनका गला दबाकर उनकी हत्या करने की चेष्टा कर रहा है। और प्रभु श्री रामचंद्र जी के अर्च विग्रह के सामने, तो जैसे ही उसने ये चेष्टा की, अब एक पैर उत्तंग ऋषि के छाती के ऊपर था और उसने अपने हाथों से उनका गला दबाने की कोशिश उसने जब प्रारंभ की तो तंग ऋषि बिल्कुल भी वो उससे उत्तेजित नहीं हुए, परंतु वो पूछते हैं, कलिक को पूछते हैं कि मुझे कोई रंज नहीं, तुम मुझे मार दो, तुम मुझे जान से मारना चाहते हो, उसका कोई मुझे रंज नहीं, परंतु मैं केवल यह बताना चाहता हूं तुम्हें कि मैं निरपराध हूं, मैं केवल प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेवा में लगा हूं, सर्वस्व मैंने इनके चरणों में अर्पित किया है और तुम इनके सामने मुझे मार रहे हो, तो मैं केवल तुमसे यही याचना करूंगा, मुझे मारो परंतु इनके सामने मत मारो, क्योंकि यदि इनके सामने तुम मुझे मारोगे तो तुम जो चाहते हो मेरे मारने के पश्चात जो कुछ वो नहीं कभी प्राप्त कर पाओगे। तो जब इस व्यक्ति ने, कलिक ने ये सुना कि ये व्यक्ति जिसे मैं मारने जा रहा हूं, ये व्यक्ति मेरे अच्छे के विषय में सोच रहा है, मेरे श्रेय के विषय में सोच रहा है ये व्यक्ति, तो तुरंत ये कलिक का हृदय पिघल गया और जो उसने गला पकड़ा था अब चरण पकड़ लिए, चरण पकड़ लिए उत्तंग ऋषि के और क्षमा याचना करते हुए वो पूछता है कि कृपा करके आप मुझे अब ये बताइए कि यहां पर इतने सोने के कलश हैं, ये पूरा जो सौवीर नगर है सुशोभित है वैभव से धन से, परंतु आप यहां पर क्या पा रहे हैं कि आप यहां पर इतने संतुष्ट मुझे दिखते हैं। तो उत्तंग ऋषि ने फिर कलिक से कहा, इनकी सेवा, ये जो प्रभु रामचंद्र हैं इनकी सेवा, यही सर्वोत्तम धन मुझे प्राप्त हुआ है और तुम्हारा जीवन मैं देख रहा हूं कि तुमने बहुत से ऐसे पाप कर्म किए हैं और ये सारे पाप कर्म यदि तुम नष्ट करना चाहते हो और वास्तविक धन प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा श्रवण करनी होगी। तो तुरंत ये कलिक, सब कुछ उसने अपना कुकर्म त्याग दिया और इस चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष में इसने श्री रामायण की कथा सुनी उत्तंग ऋषि से, और जैसे ही पूरी रामायण की कथा संपन्न हुई उसी क्षण ये कलिक, ये व्याध, ये एक समय का पापी, इसने अपने प्राण त्यागे और उत्तंग ऋषि के सामने वैकुंठ विमान आया और वैकुंठ विमान में वैकुंठ वासी थे और उन्होंने इस कलिक को वैकुंठ धाम ले गए। वो तो ये नारद मुनि ने कथा कुमारों को सुनाई कहते हुए कि इस चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष में जब इस रामायण की कथा का श्रवण किया जाता है तो उसका क्या महत्व है। और एक बहुत ही सुंदर श्लोक जिसमें कहा गया है कि रामायण श्रवण करने से पहले हमें कौन जो महापुरुष हैं जिनकी वंदना करनी चाहिए और जिनका आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए, यह रामायण की कथा प्रारंभ करने से पहले। तो एक सुंदर श्लोक में कहा गया है, कुजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखम वंदे वाल्मीकि कोकिलम वाल्मीकेर मुनिसिंहस्य कवितावन चारिण श्रृण्वन राम कथानादम को नयाति पराम गतिम। सुंदर श्लोकों में कहा गया है कि तीन महापुरुष हैं जिनकी वंदना करनी चाहिए इस रामायण के पाठ से पहले और जिनके आशीर्वाद की याचना करनी चाहिए, और वो तीन महापुरुष कौन हैं? सबसे पहले श्री वाल्मीकि मुनि, जिन्होंने रचना की श्री रामायण की। दूसरे महापुरुष हैं श्री हनुमान जी, जिनकी चर्चा भी हम करेंगे, जो राम भक्त शिरोमणि हैं। राम के भक्तों में जो शिरोमणि हैं वो हैं श्री हनुमान जी। और तीसरे महापुरुष हैं प्रभु श्री रामचंद्र। तो वाल्मीकि मुनि, इनके विषय में इस श्लोक में कहा गया है, कोकिलम मुनि सिंहस्य, कि वाल्मीकि मुनि वो एक कोयल के समान कोकिलम, और उसके साथ साथ मुनि सिंहस्य, एक सिंह के समान है इस रामायण में। अब देखिए, ये दो जो प्राणी हैं, कोयल और सिंह, इनमें कोई समानता आपको दिखती है? जब कोयल गाना शुरू करता है और सिंह गरजना शुरू करता है, तो दोनों में कुछ समानता दिखती है आपको? नहीं। लोग गीत लिखते हैं, कोयल कैसे कुकू करती है, और उसके विषय में लोग इतना गुणगान करते हैं, परंतु कोई ऐसा गीत नहीं लिखता, सिंह कैसे गर्जना करता है, वैसे ही मैं तुम्हें पुकार रहा हूं मेरे प्रियतम, सिंह की गर्जना में। परंतु यहां पर वाल्मीकि मुनि को कहा गया है कोकिलम मुनि सिंहस्य, दोनों हैं ये। क्यों दोनों हैं और कैसे हैं? क्योंकि जो रामायण की रचना वाल्मीकि मुनि ने की है, एक एक अक्षर, कहा गया है मधुरम मधुराक्षरम, एक एक अक्षर रामायण का वो कोयल के कंठ के समान मधुर है, हर एक अक्षर रामायण का। परंतु उसी के साथ साथ जो अर्थ है उन अक्षरों का, जो परमार्थ है उन अक्षरों का, वो सिंह की गर्जना के समान भारी है। तो केवल हमें रामायण की मधुरता को नहीं पकड़ना चाहिए। कई बार लोग राम कथा में बैठते हैं तो कितना सुंदर कथा हो रही है और गीत के साथ मधुर लग रही है, परंतु उसका अर्थ कभी नहीं जानते कि उसका अर्थ क्या है, वो अक्षरों का और श्लोकों का अर्थ क्या है। जब अर्थ जानेंगे तो पता लगेगा, अरे तो सिंह की चिंघाड़ है, केवल गीत के साथ वो कोयल की कुकू के समान लगती है, परंतु जब अर्थ पता लगा, कहा गया कि ये सारी काम वासना हमारे अंदर रावण के समान अंदर बैठा हुआ है, तब फिर वो सिंह की गर्जना के समान भारी लगता है वो अर्थ उसका। तो इसीलिए वाल्मीकि मुनि ये कोयल के समान मधुर उन्होंने ये अक्षर दिए हैं रामायण के, परंतु इनका जो अर्थ है, परमार्थ है, वो सिंह के समान गर्जना कर रहा है, भारी है। और जैसे वन में जब बहुत से पक्षी बैठे रहते हैं एक वृक्ष के ऊपर, और जब सिंह गर्जना करता है तो सारे पक्षी उस वृक्ष से उड़ जाते हैं, उसी प्रकार से आचार्य बताते हैं कि हमारे शरीर के ऊपर ये पाप रूपी पक्षी बैठे हुए हैं। कितने पक्षी? अनगिनत, कोई गिनती नहीं कितने पक्षी बैठे हैं इस शरीर रूपी वृक्ष के ऊपर, पापों के ये पक्षी। परंतु जब रामायण के अक्षरों की गर्जना होती है, उस सिंह की गर्जना होती है, वाल्मीकि मुनि जो मुनि सिंहस्य हैं, जब वो गर्जना होती है तो ये सारे पापों के पक्षी हैं, ये छूमंतर हो जाते हैं। और विशेष गुण बताया गया है इस गर्जना की, कि किसी वन में जब पक्षी उड़ जाए किसी वृक्ष से, परंतु कुछ समय बाद फिर से आ जाते हैं, तो कोई व्यक्ति कहेगा कि ये जो मेरे पापों के पक्षी हैं, क्या ये फिर से तो नहीं आकर बैठ जाएंगे? कहा गया है कि ये जो गर्जना है सिंह की, ये अक्षरों की, रामायण की, ये ऐसी गर्जना है कि एक बार ये शरीर को छोड़ दे ये पाप रूपी पक्षी, फिर से कभी इस शरीर में नहीं आएंगे। अरे शरीर में आना तो दूर की बात, शरीर नहीं मिलेगा, वो व्यक्ति भगवत धाम प्राप्त करेगा, दिव्य शरीर प्राप्त करेगा, आध्यात्मिक सच्चिदानंद। तो इसीलिए वाल्मीकि मुनि को यहां पर कोकिलम मुनि सिंहस्य कहा गया है। और इनके विषय में तो हमने बहुत श्रवण किया है भारत में रहते हुए, कि वाल्मीकि मुनि पहले वो कौन थे? एक लुटेरे थे, एक डकैत थे वो, और लूटते लूटते डकैती करते करते उन्होंने नारद मुनि को पकड़ लिया, उनकी डकैती करना एक बार सोचा। तो जब नारद मुनि को पकड़ लिया और पेड़ से बांध दिया नारद मुनि को, तो नारद मुनि पूछते हैं, नारद मुनि बिल्कुल भयभीत नहीं हुए, वो बिल्कुल ये सारी चीजों से भयभीत नहीं होते, बल्कि वो तो देखते हैं कि अरे एक और व्यक्ति, कोई हटके व्यक्ति मिला है प्रचार करने के लिए। तो यदि नारद मुनि का काउंसिलिंग ग्रुप आप देखो तो सब हटके उनके शिष्य हैं, मृगरारी, नलकुंवर मणिग्रीव और दक्ष प्रजापति के 11,000 पुत्र, एक सांप भी था उनका डिसाइपल, एक सांप को भी शिक्षा और उन्होंने दिव्य ज्ञान दिया था। और ये डकैत, ये लुटेरे, तो नारद मुनि पूछते हैं कि भाई ये सब कुछ डकैती, ये सब कुछ लूट जो करते हो, किसके लिए कर रहे हो? किसके लिए भाई, पापी पेट का सवाल है, और केवल एक पेट नहीं, मेरा परिवार भी है, उनके भी पेट हैं। तो नारद मुनि ने एक बहुत ही सरल सा प्रश्न पूछा कि जाकर पूछो जिसके लिए ये सब कुछ कर रहे हो, क्योंकि ये सब जो कुछ कर रहे हो अंततः तो नरक में रिजर्व है आपका सीट। तो जिसके लिए कर रहे हैं उनको जाकर पूछो कि वो भी आएंगे क्या तुम्हारे साथ, भागीदारी लेंगे ये पापों का। तो जब ये सुना उन्होंने तो तुरंत गए अपने परिवार वालों से, सबसे पहले पूछा, नारद मुनि को वहीं खड़ा रखा, बांध कर रखे गए कि मैं अगर उत्तर दूसरा हुआ तो देखना, फिर छोड़ूंगा नहीं। तो जाकर परिवार वालों से पूछा कि भाई मैं इतने लूट का काम कर रहा हूं, डकैती करता हूं, चोरी करता हूं, हत्या करता हूं, तो मुझे किसी ने बताया है कि मैं नरक जाने वाला हूं और वहां पर दंड मिलता है, और मैं तुम सब लोगों के लिए कर रहा हूं, तो आओगे कि नहीं? तो सभी एक दूसरे को देखने लगे और इनको देखने लगे, कौन है आप, ये क्या बोल रहे हैं भाई, पाप आपने किया है, पाप आपने किया है तो आपको भुगतना होगा। तो जब उन्होंने सुना कि भाई जिसके लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूं वो ये सब कुछ कह रहे हैं, तुरंत वो फिर नारद मुनि को शरणागत हुए। तो नारद मुनि ने उन्हें सबसे पहला आदेश दिया कि प्रारंभ करो अब ये सारा जो पाप का जो गठरा है ऊपर, इसको खत्म करने की जो विधि है, सबसे पहले प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम, इसका जप प्रारंभ करो। परंतु क्योंकि ये मारा मारी के इतना पूरा जीवन बिताया था तो राम का नाम इनके मुख से नहीं निकल पा रहा था, केवल लोगों को मारा तो क्या मुख से निकल रहा था, मरा। तो नारद मुनि कहते राम बोलो, मरा, उनकी जिह्वा राम का नाम उच्चारण नहीं कर पा रही थी। देखिए तो इससे वो ये सिखा रहे थे कि देखिए ये पाप इतना गहरा रहता है कि ये किसी व्यक्ति को जिह्वा से भगवान का नाम भी उच्चारण नहीं करने देता। तो फिर रामचंद्र नारद मुनि कहते हैं ठीक है तुम मरा कहो, फिर तो मरा कहोगे तो मरा 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 प्रभु रामचंद्र जी उसे राम का नाम ले लेंगे उसको और उस प्रकार से ग्रहण करेंगे, उनका ही नाम जप कर रहे हो। परंतु आचार्य बताते हैं कि वो जो मरा भी जप कर रहे थे उसका विच्छेदन करके बताते हैं उसका अर्थ क्या था। तो बताते हैं कि जो म उसका अर्थ है उनके जो पृथ्वी तत्व, जैसे हमारे शरीर में जो पृथ्वी तत्व है, तो म का अर्थ था पृथ्वी तत्व और रा का अर्थ था अग्नि तत्व। तो क्योंकि वो म रा कह रहे थे तो म रा कहने के वजह से उनका जो पृथ्वी तत्व था वो अग्नि तत्व के वजह से, म तत्व रा तत्व के वजह से खत्म हो रहा था। और इतने समय तक उन्होंने उसका जप किया कि उनके पूरे शरीर के ऊपर चींटियों ने अपना घर बना लिया, जिसे बाम्बी कहते हैं, एंट हिल। तो पूरा चींटियों ने और उसे संस्कृत में कहते हैं वाल्मीक, इसलिए उनका नाम पड़ा वाल्मीकि। तो वाल्मीकि मुनि जिनका ये इतिहास रहा और उन्होंने रामायण ग्रंथ की रचना की ये बहुत ही रोमांचक तरीके से। तो बाल कांड ये सबसे पहला कांड है रामायण का और इसमें वर्णन आता है कि वाल्मीकि मुनि नारद मुनि से भेंट करते हैं और उनसे प्रश्न पूछते हैं कि मुझे बताइए मुनि श्रेष्ठ, कि इस पृथ्वी पर कौन ऐसा व्यक्ति है जो सर्वगुण संपन्न है, जो गुणवान है, शीलवान है, धर्मज्ञ है, विद्वान है, दृढ़ व्रत है, सत्य संकल्प है, कौन ऐसा एक व्यक्ति है जिसके अंदर सारे गुण हैं। तो नारद मुनि फिर 100 श्लोकों में प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्र के विषय में कहते हैं कि यही एक व्यक्ति है इस पृथ्वी पे जो सर्वगुण संपन्न है। तो जो पहले 100 श्लोक हैं इस बालकांड के उसे बाल रामायण कहा गया है। और बाल रामायण इसलिए कहा है, इसलिए नहीं, बाल का अर्थ बालक नहीं है इसमें, बाल रामायण इसलिए कहा गया है क्योंकि नारद मुनि ने संक्षिप्त रूप में रामायण सुनाई। जैसे बालक छोटे से होते हैं, संक्षिप्त मनुष्य जिसे कह सकते हैं, तो वैसे ही बाल रामायण का अर्थ है संक्षिप्त रामायण जो नारद मुनि ने वाल्मीकि मुनि को सुनाई। और जब संक्षिप्त रामायण वाल्मीकि मुनि ने सुनी तो उसके पश्चात फिर वो गए अपने शिष्य भरद्वाज मुनि के साथ, वो गए तमसा नदी के तट पर स्नान करने के लिए। तो जब वो तमसा नदी के तट पर गए स्नान करने के लिए तो सबसे पहले जब उस नदी को देखा, इतना स्वच्छ जल और इतना स्वच्छ तट उस नदी का, तो देखते ही वाल्मीकि मुनि भरद्वाज ऋषि से कहते हैं रमणीय प्रसन्न अंभु सन मनुष्य मनो यथा। रमणीय प्रसन्न अंभु, इसे देखते ही अंभु, इस जल को देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है और ये इस प्रकार से लग रहा है सन मनुष्य मनो यथा, जैसे किसी मुनि का मन जो एकदम निर्मल हो, बिना किसी मल के, बिना किसी अनर्थ के, जो बिना किसी मल के कलमश के जिसका मन हो, उस प्रकार से ये तमसा नदी लग रही है मुझे। और ये ऐसा कह रहे थे, इसका बहुत गहरा एक कारण था, क्योंकि वहीं पर उन्होंने देखा, उस तमसा नदी के तट पर उन्होंने देखा कि कुछ पक्षी, क्राउंच पक्षी, ये बगुले के समान होते हैं, इनको कहते हैं क्राउंच, तो ये कुछ पक्षी विहार कर रहे थे। तो वाल्मीकि मुनि देखते हैं कि सुंदर जल है, स्वच्छ जल है, और यहां पर ये क्राउंच पक्षी विहार कर रहे हैं। और उसी समय एक निषाद वो अपना तीर चलाता है और उन क्राउंच पक्षियों में जो नर पक्षी है उसकी हत्या कर देता है। तो नर क्राउंच पक्षी की हत्या करता है ये निषाद, और ये सब कुछ दृश्य देख रहे हैं वाल्मीकि मुनि। तो वाल्मीकि मुनि जैसे ही देखते हैं कि इस निषाद ने नृशंस तरीके से हत्या कर दी है, इनके विहार में बाधा डाली है, तो वो एक श्लोक बोलते हैं। वो कहते हैं, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमग शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुना देखम अवधि काम मोहिता। वो कहते हैं, वो एक श्राप देते हैं उस निषाद को, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वगम शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुना देखम अवधि काम मोहिता, कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं हे निषाद, कि तुम कभी शांति का जीवन नहीं जी पाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने ये जो क्रौंच पक्षी काम मोहित होकर विहार कर रहे थे, मिथुना देखम अवधि काम मोहिता, तो इनमें से तुमने उस नर पक्षी को मारा है, इसीलिए तुम्हें मैं श्राप देता हूं कि तुम कभी शांति का जीवन नहीं जी पाओगे। और आचार्य बताते हैं कि ये जो श्राप दिया वाल्मीकि मुनि ने, ये श्राप का अर्थ बहुत गहरा है। मां निषाद, सबसे पहले उस निषाद को उल्लेख करते हुए वाल्मीकि मुनि ने यह श्लोक कहा, यह श्राप कहा। तो आचार्य बताते हैं कि मां निषाद का अर्थ क्या है। एक और अर्थ मां निषाद का है, मां है लक्ष्मी देवी, और निषाद का एक और अर्थ होता है निवास स्थान। तो मां लक्ष्मी देवी का निवास स्थान कौन है? श्रीनिवास, भगवान श्री नारायण, जिनके वक्षस्थल पर लक्ष्मी निवास करती है। तो मां निषाद, ये जो श्लोक में ये जो दो शब्द हैं, इसका अर्थ हुआ लक्ष्मी देवी जो निवास करती हैं वक्षस्थल पर भगवान श्री विष्णु के, मां निषाद। और मिथुना क्रौंच काम मोहिता, ये जो क्रौंच पक्षी मैथुन में लगा हुआ था, काम मोहित होकर विहार कर रहा था, इसकी तुलना की गई है रावण से, जो हर समय काम मोहित था, मोहिता था, वो हर समय काम से मोहित रहता था रावण, और उसका वध किया प्रभु श्री रामचंद्र जी ने। तो ये एक श्लोक में संक्षिप्त रामायण वाल्मीकि मुनि ने कह दी। हालांकि श्राप दिया उस निषाद को, परंतु इसका दूसरा अर्थ ये निकला कि उन्होंने जो सुना था रामायण, ये केवल एक श्लोक में संक्षिप्त रूप में उन्होंने रामायण क्या उसके अंदर तथ्य है वो बता दिया, और इसीलिए फिर वो भरद्वाज मुनि उनके शिष्य की तरफ मुड़कर पूछते हैं कि ये मैंने जो श्लोक गाया, ये वास्तविक रूप में श्लोक मेरे मुख से कैसे निकला। मैं स्वयं आश्चर्यचकित हो गया कि इतना सुंदर श्लोक अनुष्टुप छंद में, बिल्कुल सही व्याकरण इसका संस्कृत का, इतना सुंदर श्लोक ये निकला जब मैं शोक अवस्था में था। तो मैं शोक कर रहा था उस क्रौंच के वध के विषय में, तो शोक से श्लोक, वाल्मीकि मुनि कहते हैं भरद्वाज मुनि को, पादबद्धो अक्षर समस तंत्रिलय समन्वित शोकार्तस्य प्रवृत्तो में श्लोको भवतु नान्यतः। वो कहते हैं कि क्योंकि मैं शोक अवस्था में था उसके वजह से श्लोक निकला मेरे मुख से, और ये श्लोक बिल्कुल सही व्याकरण अनुष्टुप छंद में। तो भरद्वाज ऋषि कहते हैं कि हो सकता है विधाता की कुछ रचना हो कि इस शोक के वजह से ये श्लोक निकला आपके मुख से। और हम देखते हैं कि कितने सारे ऐसे ग्रंथ, जैसे प्रमुख जो ग्रंथ हैं उनकी उत्पत्ति भी शोक से हुई। भगवद गीता, भगवद गीता भगवान ने क्यों सुनाई? क्योंकि अर्जुन शोक में थे। पहला अध्याय भगवद गीता का, उसका शीर्षक है अर्जुन विषाद योग। सबसे पहला अध्याय गीता का अर्जुन विषाद योग, अर्जुन का शोक। तो अर्जुन का शोक जिसके वजह से भगवान के मुख से श्लोक निकले। और परीक्षित महाराज जिनको श्राप दिया, किसने श्राप दिया? श्रृंगी ने, शमिक ऋषि का पुत्र, ये ब्राह्मण ने जब श्राप दिया, ब्रह्म श्राप मिला, और जब पूरा राज्य पूरी पृथ्वी शोक में थी कि जैसे आज श्लोक में है, वैसे ही उस समय परीक्षित महाराज को जब श्राप मिला तो पूरा भारतवर्ष शोक में था। परंतु उस शोक के वजह से परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवत के श्लोक सुनने मिला। तो हम देखते हैं कि यदि हमारे जीवन में भी शोक आए और श्लोक और शोक आएंगे, और बहुत से शोक आए हैं, हो सकता है कि इस समय भी हम शोक अवस्था में रहें। जैसे कल ही हमने प्रेरणा का कार्यक्रम किया बंबई में, और हमें डर था क्योंकि ये वर्ल्ड कप क्रिकेट चल रहा है तो पता नहीं कितने लोग आएंगे। तो हमने इस प्रेरणा का टाइटल भी थोड़ा रोमांचक रखा था इस बार, अंत्य लीला ऑफ सीसी। सीसी हम जानते हैं चैतन्य चरितामृत, और उसमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी अंत्य लीलाएं की हैं, परंतु यहां पर सीसी का अर्थ था क्रिकेट कॉन्शियसनेस, अंत्य लीला ऑफ क्रिकेट कॉन्शियसनेस। तो राधानाथ महाराज और देवामृत महाराज वो प्रवक्ता थे, और दोनों अमेरिका से, और वो कह रहे थे कि अमेरिका में ये जो क्रिकेट शब्द है लोग एक ही अर्थ जानते हैं इसका, अंग्रेजी में एक कीड़े को भी क्रिकेट कहते हैं। तो वो केवल वो जो क्रिकेट कीड़ा है वही जानते हैं वहां पर, परंतु इंडिया में यदि आप उसको कीड़ा कहो तो श्राप दे देंगे, तुम कीड़ा बनोगे क्रिकेट ग्राउंड में। तो हमको थोड़ा डर था कि पता नहीं इंडिया अब खेल रही है और वर्ल्ड कप चल रहा है तो कितने लोग आएंगे, परंतु जब बताया गया, समाचार मिला हमें कि इंडिया हार चुकी है, तो देखा कितने, इतने कभी नहीं आए हमारे प्रेरणा प्रोग्राम में। वहां पर 1200 लोग, 1200 विद्यार्थी, और राधानाथ महाराज बोल रहे थे, अपना प्रवचन उन्होंने शुरू किया, उन्होंने कहा कि हमारे राधा गोपीनाथ के एक ब्रह्मचारी 1987 में कुछ वर्ल्ड कप था उस समय भी, और वो उस समय इस्कॉन के संपर्क में आ चुके थे, और उन्होंने निर्णय कर लिया था कि ब्रह्मचारी बनूंगा मैं, परंतु देखा कि अभी वर्ल्ड कप चालू होने वाला है तो थोड़ा रुक गए। थोड़ा वो रुक गए कि क्योंकि ब्रह्मचारी आश्रम में तो टीवी नहीं है और वहां पर कोई आशा नहीं है देखने की ये वर्ल्ड कप, तो पहले इसे देख लेता हूं और देखने के पश्चात फिर मैं ब्रह्मचारी आश्रम में ज्वाइन करता हूं। परंतु ऐसा ही इंडिया उसमें भी हार गई और हारने के पश्चात फिर इतनी शोक अवस्था में थे ये, और फिर गीता उठाई और गीता में भगवान कहते हैं चार प्रकार के लोग आते हैं मेरी शरण में, अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, ये चार लोग हैं। तो इसमें से एक है आर्थ, जो पीड़ित हैं, जो शोक अवस्था में हैं, वो आते हैं मेरे को शरणागत होने। तो फिर और कोई चारा नहीं था तो वो ज्वाइन किए ब्रह्मचारी आश्रम। और महाराज कहे, और आप सब इस ब्रह्मचारी को जानते हैं बहुत अच्छी से, ये हैं श्रीमान गोविंद प्रभु। तो महाराज बोल रहे थे अपने प्रवचन में कि बोरीवली में एक महान सत्संग कार्यक्रम में आयोजित किया था सत्संग कार्यक्रम, और हजारों के लिए व्यवस्था की थी, परंतु उन्होंने ये देखना भूल गए कि उस दिन कुछ क्रिकेट मैच था इंडिया पाकिस्तान का शाम को, तो बड़ा पंडाल प्रोग्राम, महाराज प्रवचन शुरू करने वाले हैं, तो देखे केवल 99% स्त्रियां बैठी हैं, एक भी पुरुष नहीं, कुछ एक दो पुरुष यहां वहां घूम रहे थे। तो महाराज ने पूछा कि आपके सबके पति कहां हैं, सभी ने कहा वो मैच देख रहे हैं टीवी में। तो महाराज ने फिर प्रवचन दिया और जब कीर्तन प्रारंभ किया तो अचानक सब पुरुषों से भर गया, कीर्तन में पुरुषों से भर गया पूरा पंडाल। तो पता लगा कि अब इंडिया जीत गई है, तो सभी भाव विभोर हो गए ये समाचार सुनकर। तो इसलिए अभी अपना अपनी भावना व्यक्त करने के लिए यहां पर नृत्य करने आए हैं हरिनाम में, और सभी जोर जोर से नाच रहे थे, परंतु कारण कुछ और था वो नाचने का। तो यहां पर वाल्मीकि मुनि को भरद्वाज मुनि कह रहे हैं कि क्योंकि आप शोक अवस्था में थे इसलिए ये सुंदर श्लोक ये आपके मुखारविंद से निकला है। और जब वो इस प्रकार की चर्चा कर रहे थे अपने आश्रम में पहुंचे तो पीछे पीछे श्री ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक सत्यलोक से नीचे वो इनके आश्रम में पहुंचे, और वहां जाकर इन्होंने वाल्मीकि मुनि से कहा कि मैंने प्रेरित किया था तुम्हें वो श्लोक उच्चारण करने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसी छंद में तुम श्री रामायण की रचना करो। और श्री ब्रह्मा जी ने आदेश दिया वाल्मीकि मुनि को रामायण की रचना करने के लिए उस छंद में जिसमें उन्होंने ये श्राप कहा, वो श्लोक उस छंद में पूरी रामायण की रचना करने के लिए। और ब्रह्मा जी एक सुंदर श्लोक वो वाल्मीकि मुनि को कहते हैं, यावस्थास्यन्ति गिरय सरितश्च महीतले तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। वो कहते हैं कि इस कलयुग में जब तक गिरी सरित, जब तक पर्वतों और नदियों की सत्ता रहेगी, तब तक इस कलयुग में रामायण की गाथा लोग गाते रहेंगे। और कौन सी रामायण की गाथा? जो तुम लिखोगे वो रामायण की गाथा लोग गाते रहेंगे, इसलिए इस रामायण की रचना इस छंद में करो। हालांकि वाल्मीकि मुनि वो स्वयं बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब ब्रह्मा जी आकर उन्हें यह आदेश दें। तो जो प्रगत भक्त होते हैं, देखिए उनका लक्षण यह होता है कि हालांकि उनके अंदर सारे गुण होते हैं, परंतु वो चाहते हैं कि जब वरिष्ठ भक्त वो अपना आशीर्वाद दें तब जाकर वो किसी प्रोजेक्ट को हाथ में लेते हैं अपना। तो यहां पर कहा गया है कि यदि हमें भी भक्ति में प्रगति करनी है तो भक्ति में प्रगति कर सकते हैं हमारे पुण्यों के वजह से भी, कुछ हमारे पिछले पुण्य होंगे उसके वजह से हमारे अंदर कुछ गुण होते हैं, भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। तो एक है पुण्यों का ईंधन जिसके वजह से हमारी भक्ति की गाड़ी चल सकती है, परंतु दूसरा है कृपा का ईंधन। तो कहा गया है जो पुण्यों का ईंधन है वो तो क्षीण हो जाएगा कुछ ही समय में, परंतु जो कृपा का ईंधन है, भक्तों की कृपा का ईंधन, वो कभी क्षीण नहीं होगा। इसलिए जो नौसिखिया भक्त होता है उसे जब शरणागति के विषय में कहा जाता है तो उसका प्रश्न क्या रहता है, क्यों शरणागति करनी चाहिए। परंतु एक जो प्रगत भक्त होता है उसका प्रश्न क्या रहता है, कैसे। तो ये दो जो प्रश्न हैं, क्यों और कैसे, ये निर्णायक रहते हैं कि हमने प्रगति की है कि नहीं। जब शरणागति का अवसर आता है तो हम क्या पूछते हैं, क्यों या कैसे। जब तक हम पूछेंगे क्यों शरणागत होना है तो प्रगति कुछ नहीं हुई अब तक। परंतु जब हम देखते हैं कि हम इस स्तर पर आ गए कि हम अब पूछते हैं कि कैसे शरणागत होना है बताइए, तो प्रगति हो रही भक्ति में। तो वाल्मीकि मुनि अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं। तो वाल्मीकि मुनि ने सबसे पहले जब इसकी रचना की, पूरे रामायण ग्रंथ की रचना की, तो लव और कुश जो उनके आश्रम में थे, रामचंद्र जी के पुत्र, उनको सुनाया। और रामायण की शुरुआत होती है लव और कुश रामायण गाते गाते अलग अलग प्रांतों से गुजरते हुए वो पहुंचते हैं अयोध्या। और अयोध्या जब पहुंचते हैं तो इतने सुंदर लव और कुश और इतनी सुंदर वाणी में वो गा रहे हैं ये सुंदर अक्षर, सुंदर श्लोक वाल्मीकि मुनि द्वारा रचित। तो रामचंद्र जी इतना आकर्षित हो जाते हैं, तो रामचंद्र जी लव और कुश को अपने दरबार में बुलाते हैं और पूरा अयोध्या वहां पर एकत्रित होता है सुनने के लिए। तो यहां पर देखिए जो हम प्रारंभ करने जाने वाले हैं राम कथा, तो इसमें प्रभु रामचंद्र जी सिखा रहे हैं कि राम की कथा कैसे श्रवण करनी चाहिए। तो जब लव और कुश वो सुना रहे थे रामायण, तो वर्णन है कि रामचंद्र जी अपने सिंहासन पर बैठे थे और सिंहासन से नीचे उतरने के लिए बहुत से स्टेप्स थे, सीढ़ियां थी, और लव और कुश नीचे थे और वो नीचे से सुना रहे थे और पूरे अयोध्या वहां पर एकत्रित थी नीचे। परंतु जैसे ही लव और कुश वो सीता के चरित्र के विषय में सुनाना उन्होंने प्रारंभ किया रामायण में, तो प्रभु रामचंद्र जी तब तक ऊपर बैठे हुए थे सिंहासन पर, परंतु जैसे ही सीता के विषय में लव कुश सुनाना प्रारंभ करते हैं तो रामचंद्र जी एक एक सीढ़ी से नीचे उतरते हुए और पास में आ रहे हैं लव और कुश के। इतने पास में आते हैं और सभी पूरा अयोध्या एकाग्रचित होकर सीता चरित्र के विषय में वो लोग सुन रहे हैं और रामचंद्र जी जमीन पर सबसे नीचे सीढ़ी पर बैठ जाते हैं बाकी अन्य अयोध्या वासियों के साथ, और किसे भी ध्यान में नहीं रहता कि हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी जो राजा हैं वो नीचे हमारे साथ बैठकर श्रवण कर रहे हैं सीता का चरित्र जब लव कुश सुनाते हैं तब। और आचार्य बहुत ही सुंदर उत्प्रेक्षा करते हैं इसकी, वो बताते हैं कि सीता जो है वो लादिनी शक्ति है भगवान की, और लादिनी शक्ति भगवान की जीवात्मा को भगवान से मिलाती है। हम जो जीवात्मा हैं, बद्ध जीवात्मा, हमको यदि श्री रामचंद्र जी से मिलना है या उनकी भक्ति में लगना है तो हमारा मिलन श्री रामचंद्र जी से लादिनी शक्ति कराती है, सीता देवी। तो जब तक रामायण में सीता देवी के विषय में नहीं कहा जा रहा था, तब तक प्रभु रामचंद्र अपने सिंहासन पर थे। तो इसके विषय में कहा गया है कि जब तक लादिनी शक्ति के विषय में चर्चा न हो, तब तक प्रभु रामचंद्र अपने धाम में ही रहेंगे, जैसे वो सिंहासन पर बैठे हुए थे। परंतु जैसे ही लादिनी शक्ति की कृपा होती है, सीता देवी की कृपा होती है, तो वही प्रभु रामचंद्र जो अपने धाम में हर समय नित्य रूप से विराजते हैं, वो उतर कर आते हैं जन साधारण के सम उनके मध्य में, और वहां पर आकर उनका उद्धार करते हैं। तो इसीलिए रामायण को रमा आयण भी कहा गया है और सीता चरित्र भी कहा गया है, इसलिए क्योंकि सीता देवी के वजह से ही जो जीवात्मा है उसका मिलन भगवान श्री रामचंद्र जी से हो सकता है। तो इस प्रकार से प्रभु रामचंद्र जी अपने उदाहरण द्वारा सिखा रहे थे कि कैसे श्रवण करना चाहिए। और श्री संप्रदाय में एक बहुत ही महान भक्त हुए, राजा थे वो भी, तो अंततः उनकी कथा कहेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से श्रवण किया। तो आगे के 7 दिन एक नमूना हमारे सामने रहेगा कि रामायण की कथा का श्रवण कैसे करना चाहिए। ये थे महाराज कुलशेखर, और दक्षिण देश के राजा थे, दक्षिण भारत के। और रोज महाराज कुलशेखर ने नियम बनाया था कि रोज रामायण से चर्चा होनी चाहिए ऑफिस में, दरबार में। लोग कई बार घर पर भी आकर चर्चा नहीं करते, ऑफिस तो दूर की बात है। यहां पर महाराज कुलशेखर अपना राज दरबार, जो कुछ राज का कारोबार कर रहे थे, उसके अंदर भी केवल रामायण की चर्चा होती थी। सारे मंत्री सुबह सुबह आते थे, ऑफिस में बैठते थे अपने चेयर पर, और वहां पर रामायण की कथा शुरू होती थी। और कोई भी समस्या लेकर कोई आए तो रामायण में देखो कि इस समस्या का हल रामचंद्र जी ने कैसे किया, तो उसे रामायण सुनाते थे। तो जो भी कोई वो समस्या लेकर आता, उसकी समस्या हल हो जाती रामायण श्रवण करने मात्र से। तो एक व्यक्ति को नियुक्त किया था रोज रामायण पढ़ने के लिए। तो ये व्यक्ति जब भी रामायण पढ़ता तो महाराज कुलशेखर एक प्रकार की समाधि में चले जाते, श्रवण करते करते। जैसे कई बार हम लोग भी दूसरी समाधि में चले जाते हैं, आंख बंद हो जाती है, और कई बार प्रवक्ता को लगता है समाधस्थ है। परंतु हम जानते हैं कि वो किस प्रकार की समाधि है। परंतु महाराज कुलशेखर बिल्कुल समाधस्थ अवस्था में वो श्रवण करते थे और उस लीला में प्रवेश कर जाते थे रामचंद्र जी की। तो वो जो कथाकार था वो रामायण से पढ़ रहा था, तो उसने पढ़ा कि किस प्रकार से रावण आता है, सन्यासी का वेश धारण करता है और सीता का हरण करता है। तो जैसे राम अब महाराज कुलशेखर ने यह सुना कि सीता का हरण कर लिया, सब ठीक चल रहा था, रामचंद्र जी को पता भी नहीं, और वो वहां पर वो सोने के हिरण के पीछे हैं और यहां पर ये छिपकर ये रावण हरण कर रहा है। तो तुरंत महाराज कुलशेखर खड़े हुए और कहा कि सेनापति को बुला। तो वो कथाकार डर गया, अभी मैंने कोई गलत पढ़ दिया, सेनापति को क्यों बुलाए। तो सेनापति को बुलाया गया, सेनापति को कहा पूरी सेना तैनात करो, तुरंत धावा बोलना है। अब सेनापति ने पूछा नहीं किस पर धावा बोलना है, तुरंत पूरी सेना को तैनात कर दिया उसने, पूरी सेना तैयार है। और महाराज कुलशेखर कहते हैं कि चलो मेरे पीछे समुद्र के तट पर, क्योंकि दक्षिण भारत से वहां समुद्र के तट से आगे लंका है। तो इस सेनापति पूरी सेना को ले जाकर महाराज कुलशेखर के पीछे जा रही पूरी सेना, सारे सैनिक पूछ रहे भाई किससे मैच करना है, मैच किसके साथ है, युद्ध किससे करना है? तो सेनापति अभी सभी एक दूसरे को पूछ रहे हैं, भाई जा रहे हैं, भाई किसको मारना है कुछ पता नहीं। तो सभी सेनापति को पूछते हैं, सेनापति जी युद्ध किसके साथ है? मतलब मुझे भी पता नहीं, तो बुलाया सेना को, तैयार करो, तो मैं भी पीछे पीछे जा रहा हूं। तो फिर मंत्रियों ने कहा, वो भाग भाग कर आए पीछे पीछे, अरे अरे तो रामायण सुन रहे थे, उसमें ये सुना, ये प्रसंग की वजह से सेना को बुलाए, तो क्या किया जाए? अभी समुद्र के तट पर पहुंच रहे हैं, तो अंदर अंदर जाने वाले हैं शायद ये समुद्र में, और ये जाएंगे तो ये बुलाएंगे हमको भी, ले जाएंगे इसके साथ। परंतु यहां पर तो कोई सेतु नहीं दिख रहा, कोई ब्रिज नहीं है। तो फिर उन्होंने एक युक्ति लगाई कि कुछ लोगों को भेजा दूसरे तरफ से, आगे से, कि आगे से आओ और जाकर हमारे महाराज कुलशेखर को कहो कि रावण का वध हो गया है, सीता फिर से प्रभु रामचंद्र जी के साथ आ गई है, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। तो उस समाधि में महाराज कुलशेखर तो जा रहे थे, और आगे से कुछ लोग आए और उन्होंने महाराज कुलशेखर को यह समाचार दिया कि चिंता मत करो, रावण का वध हो गया है और यह सब कुछ हो गया, सब शांति हो गई है। हो गया सच में, समाचार ठीक है? हाँ समाचार बिल्कुल ठीक है। तो फिर सेना फिर से अबाउट टर्न, तो पूरी सेना को फिर से भेज दिया। तो सारे सैनिक, सेनापति और सारे मंत्री, उन्होंने एक ऐसे आराम की सांस ली, कहा कि बाप रे बच गए। तब फिर उस कथाकार को कहा, अगली बार कभी इस प्रकार के प्रसंग पढ़ोगे तुम तो रावण के साथ तुम्हारा भी अंत। उसे कहा गया केवल ऐसे प्रसंग पढ़ो रामायण से कि जो जिनके अंदर सब खुशहाली है, सीताराम का विवाह, केवल इस प्रकार के प्रसंग पढ़ो। तो व्यक्ति रोज इसी प्रकार के प्रसंग पढ़ता था। एक दिन बीमार हो गया तो अपने पुत्र को भेजा पढ़ने के लिए, परंतु भूल गया बताना, पुत्र को बताना भूल गया। तो पुत्र वहां पहुंचता है और रामायण खोलकर सबसे पहला प्रसंग पढ़ता है, वो राम रावण का युद्ध। और यहां पर वो पढ़ रहा है, अकेले राम रावण से युद्ध कर रहे हैं, इतने दिन तक युद्ध चल रहा है, और अब महाराज कुलशेखर फिर से समाधि में चले गए। सुनते सुनते मेरे प्रभु रामचंद्र अकेले युद्ध कर रहे हैं इस रावण से, इतनी बड़ी सेना, और मेरे पास इतनी बड़ी सेना का क्या करूंगा मैं, तुरंत सेनापति, सेना तैयार करो। अब फिर से सेनापति ने सेना तैयार की और धावा बोलो समुद्र की तरफ। तो पूरी सेना जा रही है, सेनापति सेना को ले जा रहे हैं और महाराज कुलशेखर सबसे आगे। तो अब इतने तेजी से महाराज कुलशेखर भाग रहे थे कि अब कोई उनके पास युक्ति भी नहीं थी किस प्रकार से इन्हें रोका जाए। तो महाराज कुलशेखर समुद्र के अंदर चले गए, प्रवेश कर दिया उन्होंने। और अब ये लोग इतना डर गए, पूरा राज्य इतना डर गया कि हमारे राजा अब अंदर जा रहे हैं, कौन इसे कैसे रोके इनको। जाते जाते वो अब घुटनों तक पानी, और पानी बढ़ रहा है, और अंदर जा रहे हैं, वो अपनी समाधि में है। रावण को मैं मारता हूं, मेरी सेना मारेगी, प्रभु रामचंद्र आप निश्चिंत रहो, बोलते बोलते अंदर जा रहे हैं और अंदर जा रहे हैं समुद्र के। तभी पीछे से एक हाथ आता है और महाराज कुलशेखर को रोक लेता है वो हाथ। वो जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने स्वयं हस्तों से वो महाराज कुलशेखर को रोके हैं। और वो महाराज कुलशेखर को कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे श्रवण से इतना प्रसन्न हूं, इतना तुमने मुझे प्रसन्नता दी है कि ये समुद्र तो दूर की बात है, ये सागर तो दूर की बात है, मैं स्वयं अपने हाथों में उठाकर तुम्हें इस भव सागर से तारूंगा आज। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो प्रभु रामचंद्र जी स्वयं आकर महाराज कुलशेखर को उन्होंने आश्वासन दिया, क्यों? क्योंकि वो इस प्रकार से श्रवण किया करते थे। हमने कितनी बार सुना है सीता हरण, राम रावण का युद्ध, हा? और कितनी बार हमारे अंदर इस प्रकार की भावना जागृत होती है। कई बार तो ऑडियंस में बैठे बैठे कहते हैं हमको पता है कि क्या होने वाला है, अगर कुछ याद नहीं तो मैं बता देता हूं। सौ बार सुन लिया और वो टीवी पर भी देख लिया, परंतु यहां पर महाराज कुलशेखर अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं कि श्रवण कैसा होना चाहिए। तो आगे बालकांड में अब वाल्मीकि मुनि बताएंगे अयोध्या के विषय में कि अयोध्या जो नगरी, अयोध्या नगरी किस प्रकार की थी और वहां पर महाराज दशरथ, उनकी स्थिति किस प्रकार की थी, उसकी चर्चा हम करेंगे अब कल से। तो कल से हम अपनी राम कथा प्रारंभ करेंगे। आज महत्व बताया इस रामायण ग्रंथ का और श्रवण के महत्व का, विशेष रूप से रामायण राम कथा के श्रवण के महत्व का। तो हम अनुरोध करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए, जैसे कि नारद मुनि ने कहा कि यदि हमें इस कलयुग में हमारे सारे पापों से मुक्ति प्राप्त करनी है तो हमें सम्यक श्रूयते श्री रामायण कथा, हमें भली भांति पूर्ण प्रकार से ये श्री रामायण की कथा का श्रवण करना है और तभी जाकर हम अपना उद्धार कर पाएंगे और प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति भक्ति जागृत कर पाएंगे। बोलो श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की। तो
हरे कृष्णा हरे